गुलजार इश्किया पे तसल्ली दीजिए और इस आवारा तबस्सुम को छोड़कर कलम का जायजा लीजिए। हेलो पीपल, वी आर द इंक एंड यू आर लिसनिंग टू इंक पॉडकास्ट या बुक एडिशन। सो आज हमारे साथ हैं श्रद्धा चतुर्वेदी जी। हेलो श्रद्धा।
हाय हाय, हाउ आर यू?
सो कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
हम बढ़िया हैं, ठीक है। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाउ यू स्टार्टेड राइटिंग एंड व्हाट मेड यू राइट फॉर द फर्स्ट टाइम?
पहली बार मैंने लिखा था, मतलब मेरे कॉलेज में एक ओपन माइक हुआ था और वहाँ मैंने लोगों को सुना और ऑडियंस इंटरेक्शन हुआ, तब मैंने इंटरेक्ट किया, मुझे एक शब्द दिया गया, मैंने उससे एक लाइन बनाई। तो फिर उसी दिन से मुझे ऐसा लगा कि वो एक लाइन को, मतलब मेरे अंदर वो कीड़ा था कि एक लाइन को पूरा करना है, एक लाइन नहीं छोड़नी है, उसको कुछ तो बनाना है। तो बस तभी से लिखना शुरू किया और तब से अब तक लिख ही रही हूँ।
बहुतों का ऐसा होता है ना कि दिल टूटने पे लिखा, फिर ये वो लिखा। आपका लॉजिकली, मतलब एकदम इथिकली वाला चीज था, इथिकल चीज था।
वो बाकी सब बाद में आता है, वो सब वो लिखावट बढ़ाती है वो चीजें।
जी
शुरू तो मैंने ऐसे किया था।
चलिए, तो आपको, आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं लिखने में?
हाँ जी, मतलब मैंने पहले तो कभी किसी को, मतलब ऐसा तो मैं जितना, मतलब स्कूल तक तो किसी को सुनती ही नहीं थी, बट फिर जब कॉलेज में आई, चीजें पता चली, तो मैंने राहत इंदौरी साहब को सुना है काफी, और मतलब मौका मिल नहीं पाया उनको लाइव देखने का, और उनके बोलने का तरीका, और मतलब मैं तो कोई होती भी नहीं हूँ उनकी तारीफ करने वाली, वो तो एनीवेज एक लेजेंड है, तो मुझे, मैं बहुत इंस्पायर्ड होती थी राहत इंदौरी साहब।
आपका अगर कुछ नज्म याद हो तो वो फिर पेश कर सकते हैं आप?
अरे वो सब तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए।
इस बात पे हम सुनाते हैं, हमारे जो फेवरेट है वो तहजीब हाफी है, ठीक है?
जरूर सर।
उनका एक जो नज़्म था मुझे बहुत पसंद आया था, वो सुनाता हूँ कि था कि मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, ये बताओ कि तुम उसके आंखों के बारे में क्या जानते हो। मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, ये बताओ कि तुम उसके आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जुग्राफिया, फलसफा, साइंस, साइकोलॉजी, साइंस रियाजी वगैरह जानना भी अहम है, बताओ तुम उसके घर का पता जानते हो।
क्या बात,
ये हमको बहुत ही बढ़िया लगा था, तो याद रखिएगा बिल्कुल। तो तहजीब हाफी का बिल्कुल सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the biggest thing you achieve while writing?
Biggest thing कहूँ तो, मतलब पहले जब मैं लिखती थी तो मैं किसी को दिखाती नहीं थी, मतलब वो छोटे छोटे शायरी नज़्म जो लिखी थी मैंने, वो मेरी डायरी में होती थी या मेरे फोन में होती थी।
हाँ।
पर जब ये लॉकडाउन लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ठीक है, कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, अब कब तक छुपाएंगे आप लोगों से कि आप लिखते हैं, ऐसा कुछ है, जब मैंने लाइव परफॉर्म करना शुरू किया
होती है ये चीजें।
हाँ हाँ, तो बस मैंने जब से लाइव परफॉर्म करना शुरू किया तब से मेरी मम्मी वगैरह सब सभी लोग ने, सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे भाई भाभी बहन सब इतने खुश हो गए थे कि अरे वाह, श्रद्धा लाइव आने वाली है, हम परफॉर्म करते हुए देखेंगे, या ये देखो कितना अच्छा लिखा है इसने। तो आई गेस बिगेस्ट अचीवमेंट तो वही है, पब्लिशिंग वगैरह तो बहुत ही अच्छी बात है, बट बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि हाँ, एक फैमिली से रिकग्निशन मिला कि हाँ, ये लड़की अच्छा लिखती है, सुनना अच्छा लगता है इसको, तो वो बहुत बड़ी बात है।
अब ट्रेंड चल रहा है ना कि भाई आप किस लाइन में आ गए, तो ये एक चीज बैक करता है लोगों को लिखने के लिए या तो फिर कुछ नया चीज ट्राई करने के लिए। लेकिन हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्ट करें और वही ग्रेट लोग हैं।
वही वही।
हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर हैप्पीनेस एंड सैडेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ राइटर?
हैप्पीएस्ट एंड सैडेस्ट, हैप्पीएस्ट इज दैट व्हेन आई कैन पेन डाउन माय फीलिंग्स, मतलब अगर कोई बात करने के लिए नहीं है तो मैं अपनी फीलिंग्स बस लिख सकती हूँ, वो मेरे लिए तो वो वेंट आउट हो जाते हैं, मैं अपनी फीलिंग्स लिख लूँ। एंड कुछ बार अच्छा ये भी होता है कि लोग रिलेट कर लेते हैं उससे, तो वो और भी अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपने कुछ लिखा और सामने वाले ने रिलेट कर लिया, तो वो और खुशी की बात हो जाती है।
और राइटिंग में एक अहम बात हमने गौर की थी कि जो जितने भी राइटर, जितनी भी शायरियाँ फेमस हुई है ना, वो रिलेट के आधार पे हुए। लोग जिसको डेली लाइफ में है तो कभी ना कभी रिलेट कर पा रहे हैं ना, जो चीज़ें वो चीज़ें ही आगे जाती है। तो आप रिलेट करके लिख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, और इसको कंटिन्यू कीजिएगा।
जरूर जरूर, यही कोशिश रहती है मेरी।
अच्छा, और लिखते हैं कि इंग्लिश में लिखना प्रीफर करते हैं?
मैं इंग्लिश मतलब मैं लिखती हिंदी में हूँ, मैं हिंदी में लिखती हूँ, इंग्लिश में कोशिश कर रही हूँ लिखने की पूरे, मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लिख पाऊँ, मतलब मैंने एसेज वगैरह लिखे हैं, पोम्स वगैरह नहीं लिख पा रही हूँ अभी इंग्लिश में, क्योंकि वो फील मेरा हिंदी के साथ थोड़ा ज्यादा आता है।
ये बात अहम है कि जो फील वाली चीजें, बीइंग एन इंडियन, आपको जो फीलिंग वाली जो चीजें हिंदी गानों में ही आती है, और गाने कहीं ना कहीं शायरी वगैरह से रिलेट करते हैं,
वही
लिरिक्स तो उन्हीं की ही होती है। तो हाँ, ये बात तो सच है। अगर आप कोई सा पोयम, अगर कोड जो है वो अगर जज करने के लिए आपको मिलता है, तो आप उसमें सबसे पहली क्या चीज देखेंगे, कि कौन सा कंटेंट देखेंगे, फीलिंग देखेंगे, कि रिलेट वाली चीजें देखेंगे?
मतलब जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि हर कोड जो आप पढ़ें अच्छा सारे लग सकते हैं, जरूरी नहीं हर चीज रिलेटेबल हो, बट हाँ वो एक होता है ना स्पार्क होना, कि आप पढ़ो अब भले आपसे रिलेट नहीं कर रहा है पर वो चीज में एक स्पार्क हो कि हाँ मतलब पीपल मतलब लोग फिर उस तरह की चीज आप पढ़ना चाहें। तो मेरे लिए तो ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है हर चीज पढ़ोगे हर चीज रिलेटेबल हो ही नहीं सकती है, बट हाँ
ये
कुछ चीजें पसंद भी आ जाती है कि हाँ मतलब ये पढ़ा था पर ये अच्छा लग गया, ऐसा मेरे पे लागू नहीं होता पर अच्छा लग गया, तो वो एक स्पार्क एक फील वो अलग आ जाता है, तो ऐसा कि हाँ मतलब और पढ़ने का मन करे उस तरीके की चीज को, तो एक वो मेरे लिए मायने रखता है।
ऑडियंस के लिए कुछ एक आध शायरी वगैरह आपकी जो क्रिएशन वगैरह होगी वो सुना दीजिए।
अरे जरूर जरूर, मतलब मैंने सबसे पहले लिखी थी कलम, मतलब ये तो मतलब अब सबको समझ आ गया कि मैं कभी सुनाती हूँ तो कलम ही सुनाती हूँ, तो
कलम।
मैं सबसे पहले मैंने लिखी थी मैं वही सुनाना चाहती हूँ। कलम
ओके,
किसी के शब्दों को तस्वीर देती है कलम, किसी
वाह
के शब्दों को तस्वीर
वाह
देती है कलम, किसी की मोहब्बत को ताबीर देती है कलम। कलम
वाह
कहने को तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, कलम कहने को तो बहुत छोटा सा लफ्ज
वाह
है, पर जिसके हाथ में आ जाए उसे मुकद्दर देती है कलम।
वाह, बिल्कुल सही बात कही है आपने, जिसके हाथ में आ जाए उसको मुकद्दर
मुकद्दर देती है कलम।
ये करम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2020 का सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो लोगों ने मतलब व्हाट लॉकडाउन टॉट यू, मतलब लॉकडाउन ने आपको क्या सिखाया, आपने क्या क्या चीजें नोटिस की लॉकडाउन में हुई, वो सब बताइएगा।
लॉकडाउन में पहली बात तो जब लॉकडाउन लगा था तब तो बहुत ही ज्यादा मतलब था कि हाँ घर में बंद हो गए, भले आप पहले निकल नहीं रहे हैं घर से बट जब पाबंदी लग जाती है तब ज्यादा बुरा लगता है कि अब तो निकलना ही नहीं है, वो बड़ा बुरा था। बट फिर जब कुछ नहीं था करने के लिए तब समझ आया कि आप बहुत कुछ चीजें कर भी सकते हैं, तो लॉकडाउन ने एक तरीके से मुझे क्रिएटिव काफी बना दिया, और ये लॉकडाउन का ही नतीजा है कि आज मैं इंक पे बैठ के पॉडकास्ट दे रही हूँ, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मैंने इतनी एंथोलॉजीज में को ऑथर कर दिया, तो वो सब इस लॉकडाउन की ही देन है, क्योंकि मेरे जितने कॉम्पिटिटिव
ये बात
एंथोलॉजी
हुई थी कि लॉकडाउन के समय, आप देखिए लोग घर में थे तो कई कई टाइप्स के क्रिएटिविटी निकल के बाहर आ रहे थे, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब बहुत
वही
क्रिएटिव
वही
चीजें बाहर आई इंटरनेट के थ्रू, तो वो एक
वही
काफी थोड़ा डिफरेंट चीज थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज अ बिग ईगो हेल्प और हर्ट राइटर्स?
बिग ईगो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक बिग ईगो एवर हेल्प एनी वन टिल डेट, तो मुझे नहीं
ओके
लगता कि ईगो ने आज तक कभी किसी का हेल्प किया, वेदर यू आर एन एस्टेब्लिश्ड राइटर और एन एमेच्योर वन, बट आप किसी ना किसी स्टेज पे सीख ही रहे होते हैं, लर्न ही कर रहे होते हैं,
समटाइम्स
और तो
पीपल हेल्प यू आउट टू अचीव बिग इन योर लाइफ।
जी सॉरी
देखिए, ईगो जो होती है वो कई बार आपको हेल्प करती है कि लाइफ में आप कुछ अचीव कर पाएं, एक ईगो आता है कि मैं ये अब करके रहूंगा, ये वाली जो लाइन है ना,
जी।
ये कई बार ईगो हेल्प करती है और हर्ट भी कर सकती है, तो
हाँ तो हाँ
आपने
वो लोगों पे डिपेंड करता है, बट हाँ मेरे हिसाब से मतलब मेरे साथ वो एग्जाम्पल कभी रहा नहीं, मेरे हिसाब से वो एक ऑब्स्टेकल होता है, बट वो हाँ अगर इंसान उसको अच्छे से हैंडल कर ले तो वो जरूर एक सीढ़ी बन जाता है, अदरवाइज फिर वो एक पत्थर ही रह जाता है मेरे हिसाब से।
अगर आप कोई सा क्रिएशन अपना लिखते हैं तो आप उसमें ओरिजिनलिटी के ऊपर जाते हैं कि ये लिखते हैं कि रीडर्स क्या चाह रहे हैं, अभी ट्रेंड में क्या है वो लिखने का कोशिश करते हैं?
मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी राइटिंग्स जो है मतलब आई ट्राई टू बी ट्रू टू माई राइटिंग्स, मतलब जो मैं लिखती हूँ जो मैं फील करती हूँ मैं वही लिखती हूँ, मैं फेक नहीं लिख सकती, मतलब ऐसा है कि हाँ एकदम नेसेसिटी है कि हाँ इस टॉपिक पे लिखना ही है, नीड और आर मतलब लिखना ही है एकदम, तो बात अलग है, वरना क्योंकि अगर मैं खुद ही अपना लिखा हुआ पसंद नहीं करूंगी तो तो मैं ये पाठकों से उम्मीद भी नहीं कर सकती कि वो मेरा लिखा हुआ पसंद करें, तो इसलिए मैं वही लिखती हूँ जो मैं फील करती हूँ।
जी बहुत बढ़िया। आपके कोई ऑथर्स और दोस्त हैं अभी, मतलब आपके कॉन्टेक्ट्स में?
हाँ मतलब हाँ हैं, ऑथर्स हैं, एक जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इस वक्त, और भी कम्युनिटी में हैं लोग, एंड दे आर रियली हेल्पिंग मी आउट। तो बहुत अच्छा लगता है जान के कि हाँ सामने वाला आपको सिखाने के लिए, आपसे सीखने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई है। तो इस कम्युनिटी में नए होने के बाद भी वैसा सा लगता है कि हाँ बहुत सालों से जानती हूँ मैं सबको, तो बहुत अच्छा लगता है ये जान के।
ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू कुड टेल योर यंगर सेल्फ कि आप कैसे होते हैं और आगे क्या लिखते हैं?
मैं अपने यंगर सेल्फ को एक चीज बेसिक बताना चाहती हूँ जो शायद मुझे किसी ने नहीं बताई थी, कि प्यार के अलावा भी टॉपिक होते हैं लिखने के लिए, सच में।
ये तो बहुत ही सही बात है। इवन मैं भी लिखना शुरू किया था तो पहले प्यार ही प्यार, अब थोड़ी आ रही है एक काश मैं मुस्लिम होता करके एक शायरी अभी हाल ही में लिखी, फिर एक तालाब की मिट्टी करके लिखी, फिर कुछ कुछ है जो अब रिलेट करने आ रही है, लाइफ सिखा देती है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं।
वही वही, तो मतलब बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई लव के आगे भी थी चीजें, और भी चीजों पर लिख सकती थी, तो अब चल रहा है वो।
प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ाई कर लो मौका है।
एकदम सही, एकदम सही कहा।
ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसको और इनोवेटिव बनाते हैं और दो चार अपनी कुछ सुनाइए, थोड़ा ऑडियंस भी मौज मस्ती कर ले।
जरूर जरूर जरूर, सुनाना चाहती हूँ। तो एक लिखी थी मैंने, थोड़ा तो वक्त लगता है।
ओके, थोड़ा
तो मैं सुनाती तो जज्बातों को अल्फाज देने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जज्बातों को अल्फाज देने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अरे जल्दबाजी करने वालों थोड़ा ठहर भी जाओ, किसी की खामोशी को आवाज देने में थोड़ा सा वक्त लगता है।
वाह 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 वाह, किसी की खामोशी को आवाज देने में थोड़ा सा वक्त
लगता है। अब तलक कोई आया नहीं जो इस खामोशी को आवाज दे सके। अब तलक कोई आया नहीं जो इस खामोशी को आवाज दे सके।
और
आवाज देने से भी पहले इस खामोशी से ताल्लुकात करने में थोड़ा सा वक्त।
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी वर्ड की जो चॉइस है ना, मतलब टॉप नॉच वाली चॉइस है, बिल्कुल। इसी बात पे मेरा सुनिए कि हम एक दांव पेच हो जाए थोड़ी। तेरी खूबसूरती का मैं जमाने में इश्तिहार दिए जाता हूँ। इश्तिहार न्यूज़पेपर है ना। तेरी खूबसूरती का मैं जमाने में इश्तिहार दिए जाता हूँ, बस इसी तरह गुलाब का गुलिस्ता और खुद को गुलाम से गालिब किया जाता हूँ।
वाह,
ये बहुत पहले लिखे थे तो खैर अब तो और सोशल इश्यूज पे लिखे हैं, ये प्यार मोहब्बत वाली चीजें थी, लेकिन ये अच्छा लिख गए हम उस समय। तो चलो आगे बढ़ते हैं। What was the best money you ever spent as a writer?
Best money I ever spent is, मतलब पहले मैं इतना, मतलब मुझे तो खर्चा करना पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, बट अगर मैंने कभी खुद के लिए कुछ खरीदा है तो वो है डायरीज, क्योंकि मुझे डायरीज का बहुत शौक है, क्योंकि मैं लिखती हूँ, मतलब पहले तो ऐसी जमा रहती थी, बट अब डायरीज सुंदर सुंदर कवर्स होते हैं उनके, तो डायरीज। और फिर मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं जश्न रेखता गई थी, हम बुक फेयर गई थी, तो वहाँ जाके बस शायरी की किताबें ही दिखती हैं मुझे आजकल, तो मैं वही लेके आती हूँ। तो हाँ मतलब मेरा अभी तक का हाँ बेस्ट मनी इन्वेस्टमेंट यही है, या फिर मैंने राइटिंग जो पब्लिश कराई है अपनी, बस मैं तो वही कहती हूँ कि हाँ बेस्ट मनी स्पेंट।
ठीक है, बढ़िया। आपके एज अ राइटर व्हाट वुड यू चूज एज मैस्कॉट, अवतार और स्पिरिट एनिमल?
मेरा जो मैस्कॉट है वो बहुत ऑड है, मतलब काफी लोगों को तो पसंद भी नहीं होती है वो, बट मुझे ईगल बहुत पसंद है।
ईगल वाली वो आती है ना, फीलिंग आती है ईगल से।
हाँ वो एक फियर्स और एक मतलब केयरलेस और एक वो डरती नहीं है वो कुछ भी करने से, तो वो एक मजेस्टिक सा एक रॉयल लुक होता है ईगल का अपना, तो इसीलिए वो मुझे पसंद है कि हाँ मतलब डरना नहीं किसी से, आप जो चाहे वो लिखें, आप जो फील करते हैं वो लिखें, चाहे जैसा लिखें, आप जो भी जॉनर लिखें, बट आपको डरना नहीं है किसी से, तो इसीलिए आई लाइक ईगल।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज लिटरेरी सक्सेस लुक लाइक टू यू?
देयर इज नेवर अ पर्टिकुलर लुक ऑफ सक्सेस फॉर मी, व्हेनेवर आई फील दैट आई कनेक्टेड विद पीपल थ्रू माय राइटिंग्स और या फिर वो मेरे कही हुई किसी बात से जोड़ पा रहे हैं खुद को, तो आई गेस वही मेरे लिए एक सक्सेसफुल मोमेंट है, क्योंकि अभी तो आई एम स्टिल स्टार्टिंग. तो मेरे लिए अभी एज सच कोई लिटरेरी सक्सेस है ही नहीं, आई एम स्टिल स्टार्टिंग, आई एम स्टिल अचीविंग. तो मेरे हिसाब से अगर लोग मेरी कई बातों को समझ पा रहे हैं, खुद को जोड़ पा रहे हैं, तो आई गेस मेरे लिए वही हर मोमेंट फिर वही एक सक्सेसफुल मोमेंट होता है.
जी 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 ओके. डू यू व्यू राइटिंग एज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस?
येस आई डू, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ चल रहा है और आप लिख दो तो इट रियली काम्स मी डाउन. इट गिव माई थॉट अ सेफ स्पेस. मतलब अगर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हबड़ डबड़ है और वो मैं लिखने के बाद बहुत शांत हो जाती हूँ, ऐसा मुझे फील होता है. तो इट्स रियली योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस.
ओके, इफ यू डिडंट राइट व्हाट वुड यू डू फॉर वर्क?
इफ आई डिडंट राइट आई वुड हैव बीन डूइंग समथिंग इन डांस.
So, आप डांस करती हैं तो तो बता दीजिए कि आपके डांसिंग जो है वो कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आपको?
It's on my Instagram, so if you wanna see me dancing, see me writing, it's Instagram, it's Shraddha Chaturvedi _ is my Instagram handle, so you can find me there. डांस नाम टाइप करोगी अब तो मैं मिल ही जाऊंगी, इतनी तो फेमस हो गई हूँ.
बहुत बढ़िया. तो ऑडियंस, हमारे ऑडियंस इसको बिल्कुल सर्च कीजिएगा जो आईडी बताई गई है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट वाज द हार्डेस्ट सीन टू राइट?
हार्डेस्ट सीन था जब, क्योंकि यूट्यूब चैनल है मेरा, मेरे भाई वगैरह हम सब ने साथ में शुरू किया था, वो भी लॉकडाउन की क्रिएटिविटी का नतीजा है.
जी.
तो व्हेन आई वाज राइटिंग अ वॉइस ओवर फॉर अ शॉर्ट फिल्म, और वो शॉर्ट फिल्म का वॉइस ओवर था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे. तो वो बिल्कुल भी, मतलब पहली बार मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही थी, बिकॉज जाहिर सी बात है यहाँ मैं मतलब लिटरली आई एम नॉट मैरिड इनफ, और यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मैं लिख रही हूँ, तो वो बहुत मुश्किल था रिलेट करना. तो वही था एक, और इट वॉज रियली समथिंग रियली स्ट्रॉन्ग एंड रियली इमोशनल, जो इतना तो उतरना, तो फिर वो उस जोन में जाके लिखना बड़ा मुश्किल था. बट हाँ, कुछ लिखा था मैंने तब, एंड रियली लाइक अभी अच्छा लिखा था मैंने, टच वुड इट्स नाइस, बट हाँ बहुत डिफिकल्ट था उसको लिखना.
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर आर्टिस्टिक प्रोसेस?
डिफिकल्ट पार्ट तो वही होता है जब एक राइटर ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉक के आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे, आप कुछ भी लिख नहीं पा रहे, आप चाहते हैं फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं, आपके पास पूरा वक्त है पर आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, आप किसी भी वजह से हो सकता है आप टेंशन में या जो भी है, तो वो बड़ा ही बुरा लगता है मुझे.
हाँ वो तो है. सो अगर आप एज अ टीनेज राइटर, अगर अभी के जो राइटर्स हैं एडल्ट हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, कि उनको सजेशन देना चाहेंगे, तो वो क्या होगा?
मैं सच में कहना चाहूँगी, बिकॉज मेरा जो स्कूल का फील्ड था वो अलग था, कॉलेज में एकदम अलग चीज़ पढ़ी थी, और अभी मैं एकदम अलग चीज़ कर रही हूँ. तो अगर मतलब अगर मुझे पहले से पता होता या मेरे बिल्कुल भी ऐसा होता कि हाँ मैं लिखना चाहती हूँ, तो आई वुड हैव चूजन डिफरेंट फील्ड इन माई कॉलेज, इन माई स्कूल. मैं आर्ट्स लेती, आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैं आर्ट्स लेती, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स थी कॉलेज में, मैं लिटरेचर पढ़ती, तो वो क्योंकि
काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमारी जो है, हम भी एक इंजीनियर हैं, तो फिर ये फील होती है कि काश अगर उर्दू हमारी जो फेवरेट है उसमें अगर कुछ लिटरेचर कोर्सेज कर लिए होते तो फिर बेटर होता आज कुछ.
हाँ वही, क्योंकि बेसिक सारे मतलब इतना कोई खास फर्क नहीं होता, बट लिटरेचर बैकग्राउंड जब आपका होता है तो वो बेसिक थोड़ा ग्रामर, मतलब वो काफी चीजें फिर अपने आप लाइन में आती जाती हैं.
तो चलिए आखिर के पार्ट में, अब आपके पास कोई और क्रिएशन हो तो वो ऑडियंस को सुना दीजिए.
जरूर जरूर. तो एक छोटी सी सुनाना चाहती हूँ मैं.
हाँ,
गुस्ताखी लिखी थी मैंने, तो पता नहीं लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, बट ये बड़ी अच्छी सी लगती है.
आपके दोस्त सुनाई दो, बहुत हमको पसंद आई, ऑडियंस को बिल्कुल पसंद आएगी, और ये भी आएगी पसंद.
थैंक यू. तो उसका नाम गुस्ताखी है. मजनू बन जाओ, इतनी हैसियत नहीं तुम्हारी.
वाह, इतनी हैसियत नहीं तुम्हारी.
मजनू बन जाओ, क्योंकि उन लोगों का लेवल अलग था, लैला मजनू ही राजा का. अब तो ऐसे ही आते हैं ऐसे क्लोज साइडों. तो मजनू बन जाओ, इतनी हैसियत नहीं तुम्हारी, रांझे की तौहीन ना करो.
वाह वाह वाह.
मजनू बन जाओ, इतनी हैसियत नहीं तुम्हारी, रांझे की तौहीन ना
करो.
हर किसी से दिल लगा बैठते हो ये कहकर कि बस तुम ही हो,
वाह बहुत मतलब
हर किसी से दिल लगा बैठते हो ये कहकर कि बस तुम ही हो, तो जनाब इसे प्यार कहने की गुस्ताखी ना करो।
बिल्कुल
शुक्रिया।
बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया थी। ये वाली होती है ना, ये वाली चीज़ें होती है कि मेरा वाला अलग है। ये चीज़ें आजकल की ट्रेंड में हैं जो कि गलत है। मतलब प्यार करो तो हीर रांझे जैसा करो, और प्यार ऐसा करो कि चलिए लास्ट शायरी के साथ आज की आपके साथ इंटरव्यू को हम खत्म करना चाहेंगे, ठीक है?
जरूर
इसी के साथ ये लाइन मैं जोड़ता हूँ कि प्यार ऐसा करो कि ये शायरी लिख पाओ जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो
ठीक।
ये ऐसी है कि गजल की जमीन तू, गजल की जमीन तू हूँ मैं आईने का रंग, गजल की जमीन तू हूँ मैं आईने का रंग, आशिक तेरी कहानी लिए उड़ता जैसे पतंग।
क्या बात।
तो चलिए ऑडियंस, आपसे अलविदा लेते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।